थोड़ा स्पेस देना होगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये स्थल श्रीपाद मध्वाचार्य का क्या है? जन्म स्थली है, जिसको पजा का क्षेत्र कहते हैं। पजा का क्षेत्र, तो श्रीपाद मध्वाचार्य, जैसे हमने कल भी सुना था कुछ समय के लिए, कि हमारे इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। और मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, जिस प्रकार से रामानुजाचार्य कौन से संप्रदाय के आचार्य हैं? श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। और कुमार संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? निम्बार्क आचार्य। और रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? शंकराचार्य नहीं है, विष्णु स्वामी। तो मध्वाचार्य के बारे में कल हमने सुना था, और उनके जो बहुत प्रिय विग्रह है उडुपी कृष्णा, उनका दर्शन भी किया सबने, किया कि नहीं किया? तो सुबह कल किस प्रकार से मध्वाचार्य ने कृष्ण की सेवा के लिए सुंदर अरेंजमेंट की है। तो यहाँ इस स्थान में एक ब्राह्मण निवास कर रहे थे, जिनका नाम था मध्य गेह भट्ट, पजका क्षेत्र में। तो ऐसे मध्य गेह भट्ट ये यहां से नियमित रूप से उडुपी जाया करते थे अनंतेश्वर का सेवा करने के लिए, उनका पूजन आदि करने के लिए। और अनंतेश्वर ये शिवलिंगी है, लेकिन उनमें कौन है निवास करता है? भगवान विष्णु अंतर्यामी के रूप में, ये जगत को दिखाने के लिए। इसी कारण से मध्वाचार्य भी हर रोज अनंतेश्वर का दर्शन और उनको प्रणाम किया करते थे। जैसे मैंने कल भी कहा था कि परशुराम के द्वारा या जो अनंतेश्वर है वो भगवान परशुराम का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जो विग्रह हैं। तो एक बार उच्च लोकों में सारे देवतागण बहुत सारे परेशान हो गए। ऐसे नहीं कि जगत में ही परेशानी है, कहाँ कहाँ परेशानी है, उच्च लोकों तक परेशान है सारे जीव। तो देवताओं में परेशानी थी, और परेशानी क्या थी कि शंकराचार्य ने निर्विशेषवाद को पूरे संसार में फैला दिया है, और ये बुद्धिज्म भी फैला हुआ है। तो जो ब्रह्मा है वो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य है। तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए, देवताओं के साथ विष्णु के पास जाते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे संप्रदाय का क्या होगा? किसने कहा? ब्रह्मा को चिंता हो गई कि मेरे संप्रदाय का क्या स्थिति होगी। तो जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे आगे गुरु परंपरा की आवश्यकता है, कंटिन्यूअसली ये संप्रदाय फ्लो करता रहे आगे। तो भगवान ने देखा सारे देवतागण वहां बैठे हुए हैं उनके सामने, तो भगवान की दृष्टि वायुदेव के ऊपर पड़ी। किसके ऊपर? वायुदेव के ऊपर पड़ी। और जैसे वायुदेव पर पड़ी तो उन्होंने कहा, वायुदेव आप अभी के अभी चले जाओ। किस रूप में? एज अ मध्वा, मधवा के रूप में चले जाओ, मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हो और एक चीज की स्थापना करो। कौन सी चीज की? कि मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो रूप है वो परम सत्य है। क्योंकि शंकराचार्य ने तो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं किया था। और दूसरी चीज ये भी स्थापित करो कि मेरी जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, वह सर्वश्रेष्ठ साधन है मुझे प्राप्त करने का। और ये जो गलत व्याख्या शंकराचार्य ने की है उसको परास्त करके जो वास्तविक सिद्धांत है उसकी स्थापना करो। तो उस समय वायुदेव एक प्रकार से तैयार हो जाते हैं। और उसी समय जब ये सारा कन्वर्सेशन हो रहा था उच्च जगह में, तो उसी समय अनंतेश्वर का जो टेम्पल है, मकर संक्रांति के दिन हजारों हजारों लोग आते हैं उडुपी में विशेष रूप से। तो जो अनंतेश्वर का टेम्पल है उसके सामने जो पिलर है, उस खंबे के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ जाता है तेजी से, और वो चढ़कर ऊपर से चिल्लाने लगता है, उसके ऊपर नाचने लगता है। और सबने देखा कि ये व्यक्ति कुछ असाधारण व्यक्ति है और असाधारण रूप से वर्तनुक कर रहा है। तो उस समय उस व्यक्ति ने ऊपर से जोर से चिल्लाना शुरू किया कि एक व्यक्ति, उन्होंने कहा वायु का अवतार उड़ुपिया इस स्थान में जल्द ही प्रकट होने वाला है, जो मायावाद का खंडन करेगा और भगवान के रूप की स्थापना करते हुए शुद्ध भक्ति की शिक्षा सबको देगा। ये बोलकर वो व्यक्ति नीचे उतर जाता है और क्राउड में अप्रकट हो जाता है, भीड़ में चला जाता है, अप्रकट होता है सबके आंखों से। तब वहां जब ये पजा का क्षेत्र में जो मध्य गेह भट्ट है, ये नियमित रूप से जाते थे वहां अनंतेश्वर, ये भी वहां थे, अनंतेश्वर का उस दिन दर्शन करने के लिए गए थे। इन्होंने भी ये आकाशवाणी सुनी थी, अभी पहले तो माइक नहीं थे। अच्छा है कि ऊपर ऊंचे जगह में जाकर क्या करो, ध्वनि प्रसारित करो। तो फिर ये भी मध्य गेह भट्ट भी वहां थे और वो वापस इस स्थान में आते हैं। वो युवा थे तो एक युवती से उनका विवाह होता है जिनका नाम था वेदवती। क्या नाम था? वेदवती। तो मध्य गेह भट्ट हमेशा मग्न रहते थे, बहुत ईगर थे और हमेशा कृष्ण कथा श्रवण आदि में और भगवान की सेवा में मग्न रहते थे। और ये दोनों पति पत्नी भी बहुत सिंसियर सोल थे और ये दोनों रोज जाते थे यहां से चलते हुए अनंतेश्वर की सेवा करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। और इन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि हे भगवान अनंतेश्वर, हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो रजो और तमोगुण से रहित हो, और जो व्यक्ति ऐसा जो आपका अनन्य भक्त हो। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये जो अपना प्रस्ताव है, साथ साथ अपने जो फैमिली विग्रह है, कौन है उनके फैमिली विग्रह? अनंत पद्मनाभ, जो अभी अपने दर्शन किए, उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा। और जिस प्रकार से भगवान वामन देव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए आदिति और कश्यप ने पयोव्रत, विशेष रूप से आदिति ने पयोव्रत रखा था कश्यप के आदेशों पर, वैसा ही इन्होंने भी किया और 12 साल तक भगवान की कंटिन्यूअसली निरर्थक सेवा की और इनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और गर्भधान संस्कार का पालन करते हुए उनके जो फैमिली विग्रह है उनकी पंचगव्य आदि से अभिषेक और सेवा करते हुए उन्होंने 12 साल बिताए। और फिर फाइनली एक समय आया 1238 में, इस संसार में कौन प्रकट हो गए? श्रीपाद मध्वाचार्य, इसी स्थान में, ये उनका जो घर है, मध्वाचार्य प्रकट हो जाते हैं इस स्थान में। और फिर एक ज्योतिषी को बुलाया जाता है, जात कर्म संस्कार आदि होते हैं। और फिर मध्वाचार्य को, जैसे कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी जीवा को गोल्ड का स्पर्श करते या घी का स्पर्श करते हैं, या फिर इससे क्या होता है, जब या तो तुलसी का स्पर्श करते जीवा को तो उस बालक में भगवत भक्ति इन्वोक हो जाती है, क्या कहते हैं इसको,
जाग जाती है।
हाँ, या हनी का स्पर्श करते हैं तो उसका क्या कहते हैं एपेटाइट, भूख लगना वगैरह, हाँ, वो सारे क्रियाएं बिल्कुल संतुलित होती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जात कर्म आदि किए और फिर जब ज्योतिषी को बुलाया तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के, इस बालक के शरीर पर महापुरुष के 32 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं?
32।
ये चैतन्य चरितामृत में भी दिए गए हैं 32 लक्षण। तो ये 32 लक्षणों से सुसज्जित ये बालक है और उन्होंने कहा कि ये वायु का अवतार है और भगवान के साकारवाद की स्थापना करेगा। पहले ये भीम के रूप में अवतरित हुआ था और उससे पहले किस रूप में? हनुमान जी के रूप में अवतरित हुआ था। तो ऐसे मध्यगीय भट्ट ने देखा कि उनके घर में बालक प्रकट हो गया है तो दौड़ते हुए आए, आके अपने बालक का मुख देखते हैं और उसका नाम रखते हैं वासुदेव। क्या नाम रखते हैं?
वासुदेव।
और वैसे भी नामकरण संस्कार में जो पिता होता है उसने अपने पुत्र के कान में उसका नाम बोलना होता है। आपने किया है अपने बच्चों का नामकरण ऐसे?
हमारे ऐसे नहीं होता।
ठीक है, अच्छा है, नहीं होता। तो फिर तो ये वैदिक संस्कारों के अनुसार है। तो फिर जो मध्वाचार्य हैं वो प्रकट होते हैं इस स्थान में और फिर ये लोग सोचते हैं कि भगवान अनंतेश्वर की कृपा से ही ये बालक हमें प्राप्त हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, इसको अनंतेश्वर के दर्शन के लिए ले जाना चाहिए। तब ये छोटा सा बालक था, 2 सेवक आगे 4 सेवक पीछे, अरे 2 पति पत्नी। क्या इनका नाम था? पुत्र का नहीं, मध्य गेह बट्टा और वेदवती, ये दोनों निकल पड़ते हैं, जाते हैं और जंगल का रास्ता था। अभी लगा आपको थोड़ा बहुत जंगल? रास्ते में और कोई टेंपल नजर आया आपको क्या? हाँ, वो इम्पोर्टेंट टेंपल है, मध्वाचार्य के पास टाइम से भरा पड़ा है, हमारे पास समय नहीं, नहीं तो हम ऊपर चले जाते, वो हिल्स के ऊपर दुर्गा देवी का टेंपल है। किसका टेंपल है? तो जो मध्वाचार्य बाल्यकाल में वो उनका खेल कूदने का स्थान वो था। एक बार अभी थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, अभी हम कहाँ जा रहे थे बालक को लेकर? अनंतेश्वर। अभी आपको हिल पर ले जाते। तो एक बार मध्वाचार्य जब उनकी माता यहाँ थी तो ये खेलने कूदने के लिए वहां जाते थे और मध्वाचार्य की माँ ने एक बार बुलाया, वासुदेव जल्दी आ जाओ। तो वासुदेव उधर ऊपर क्या कर रहा था? खेल रहा था। माँ ऐसी बोलती कि नहीं तो वासुदेव ऊपर से जंप मार के 1 सेकंड में किसके सामने खड़ा हो जाता है और इतना तेजी से कि आज भी वो चरण चिन्ह उनके उस दूसरे टेंपल में है जहां हम जाएंगे। वहां से उन्होंने जंप मारे उस पहाड़ से, कहा वो पहले कौन थे? वायु, और वैसे भी हनुमान जी है जो जंप मारने में हमेशा एक्सपर्ट है। तो ऐसे इस बालक को ग्रेटफुल महसूस कर रहे थे मध्य गए बट्ट वेदवती कि अनंतेश्वर की कृपा से मिले हैं, चलो उनके चरणों में ले जाते हैं इसके दर्शन कराने। तो वो ले गए, वहां दर्शन आदि करते हैं और फिर जब वापस आ रहे थे जंगल से तो अचानक उनके जो 2 सर्वेंट से जिनको साथ ले गए थे उनको ब्लड, क्या कहते हैं, रक्त की उल्टियां होने लगती है। पीछे के 4 सर्वेंट के साथ भी वैसे होने लगता है। तो मध्य के इस भट्ट सोचते हैं कि यह भूत का प्रभाव है। किसका? किसका?
भूत का।
तो भूत, वो सोचे कि भूत के कारण ही ऐसे हो रहा है। तो मध्य के भट्ट ने बहुत मंत्राज उच्चारण किए लेकिन भूत का जो प्रकोप है वो कम नहीं हो रहा था। और अभी कई लोग जो मॉडर्न लोग कहते भूत नहीं है लेकिन भूत है। प्रभुपाद ने कई ऐसे चर्च खरीदे थे जहां भूत ही भूत थे चर्च के अंदर। तो कई बार जो ब्रह्मचारी बेचारे रहते थे अंदर उनका जीना हराम हो गया था, सारा उनका लगेज रात में यहां से वहां पटका जाता था और कितने आवाजें होती थी। तो प्रभुपाद कहते थे लेने से पहले ही जब ऐसी होती थी घटना है, प्रभुपाद कहते थे पूरे रात कीर्तन करो यहाँ हरे कृष्णा
जोर
से
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम राम राम। ऐसी कई सारी घटनाएं इस्कॉन की हिस्ट्री में भी हैं। विदेशों में जो पुराने पुराने बहुत पुराने चर्च खरीदे गए थे, टेम्पल में कन्वर्ट किया, तो ऐसे जब इन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, कोई मंत्र काम नहीं कर रहा था, तो फिर वो भूत स्वयं बोलने लगता है। वो कहता है कि मैं तो आप सबको कुछ करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं तो इस बालक की चरण धूलि चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? हाँ, इस बालक की चरण धूलि में अपने माथे में लगाना चाहता हूँ, जिसके द्वारा इस प्रेत के बॉडी से मैं उद्धार हो सकता है मेरा परमानेंटली। इस कारण से वो उस वासुदेव के चरण कमलों का डस्ट वो लेते हैं और फिर उनका उद्धार हो जाता है उस प्रेत योनि से, और वो निकल जाते हैं और सारे लोग घर वापस आ जाते हैं। तो ये है वासुदेव या मध्वाचार्य, बचपन से आयु धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन शरीर कैसे हो रहा था, हेवीली बढ़ते जा रहा था। ये पावरफुल थे मध्वाचार्य, इतना शक्ति था उनमें कि एक दिन उनकी माता वेदवती जब बाहर चले जाती है, तो अपनी जो बड़ी बहन है उनके पास इनको संभालने के लिए रखा जाता है। तो उस समय इनको बहुत भूख लगती है। हाँ, जैसे भीम का दूसरा नाम क्या है? व्रकोदर। जैसे मध्वाचार्य कहा करते थे अपने डिसाइपल को, मेरे पेट के अंदर कितनी बड़ी आग है मैं भूल गया, कुछ एक साइज उन्होंने बोला था। कहते हैं निरंतर वो आग ऐसी जलती रहती है, जिसके कारण मुझे क्या करना पड़ता है, प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है। तो ये जो बालक है, इनको इतनी भूख लग रही थी जो अपने बहन के पास थे, और वो रोने लगे, और उनकी सिस्टर ने कहा कि अभी वेट करो, माँ आएगी और आपको दूध और केला देगी। तो लेकिन इनसे रहा नहीं जा रहा था, और रोते जा रहे थे। बहन भी कहाँ चली गई, तो जो उनकी गौशाला जहाँ गाय और बैल बांधे होते हैं, तो बैल के लिए जो चने रखते हैं ना, बड़े बड़े चने या कुछ खिलाते हैं, एक 40 किलो का बोरी वहां था। कितने किलो का?
40।
अभी तक इनका ठीक से अन्न प्राशन नहीं हुआ था। तो ये गए और सीधा अपना मुंह किसमें घुसा दिया?
बोरी में।
और कुछ समय के बाद देखा गया कि बिल्कुल शांत होकर वहां बैठे हुए हैं। और फिर माता और ये सब आके देखते हैं उनके सिस्टर, तो वो वहां वर्णन आता है। एक्चुअली एक ग्रंथ लिखा मध्वाचार्य के शिष्य ने, जिसका नाम है मध्व विजय, जिसमें सारे पास टाइम्स हैं। और ये सारे पास टाइम जो छोटे छोटे में बोल रहा हो, ये चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में दिया है, आप यदि फ्यूचर में पढ़ते हैं। तो जब वो पूरा बोरी खाकर शांत हो गए, तो ये सब आश्चर्यचकित होकर उनको देखने लगे। उन्होंने कहा कि अबे इस बालक का क्या होगा, कि एक यंग बैल, तरुण बैल इतना नहीं खाता एक समय में, इतना किसने खा लिया था? मध्वाचार्य वासुदेव ने खा लिया था। तो अभी इन सबको चिंता लग गई। हाँ, तो उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, किसको? धन्वंतरी को। धन्वंतरी क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है, वैद्य है। तो उनको प्रार्थना करने लगी। धन्वंतरी शांति सुक्त था, वो शांति सुक्त जो प्रार्थना है, जैसे आप श्रीरंगम में जाओगे तो वह धन्वंतरी टेम्पल है। तो ये प्रार्थना है उनको की, ताकि इसने इतने चने और ये सब खाया है, इसका डाइजेशन ठीक हो जाए। तो ऐसे आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण ने ब्रजवासियों को अपने लीलाओं से आनंद दिया था, उसी प्रकार से मध्वाचार्य ने भी अपनी बाल लीलाओं से यहाँ पजाका क्षेत्र के लोगों को आनंदित किया था, सबके मन को चुरा लिया था। तो एक बार ये, और हमेशा कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते थे और बहाना ढूंढते थे घर से बाहर निकलने का। छोटे से ही थे अभी, चल नहीं आ रहा होगा छोटा सा, तो गए एक बैल को देखा, बड़ा मोटा तगड़ा सांड था। देखा, जाकर उसकी पूंछ पकड़ ली। क्या पकड़ ली? सारे गांव के लोग उससे डरते थे, और मध्वाचार्य जाए उसकी पूंछ पकड़े, और उसके जो सींग थे बड़े शार्प थे, सब लोग डरते थे, पूंछ पकड़ के छोड़ नहीं रहे थे, और वो बैल भी इतना डर रहा था इनसे कि वो भागने लगा। और जंगल में ले गया. पूरा दिन घर के लोग मध्वाचार्य को ढूंढ रहे, वासुदेव को ढूंढ रहे कि कहाँ है वासुदेव, कहाँ है वासुदेव. सारा गांव ढूंढ लिया. फिर शाम को देखा कि बैल के साथ पूंछ पकड़ते हुए घर आ रहे वापस. तो ऐसे वासुदेव हमेशा हम बिजी रहते थे ऐसे ऐसे कार्यों में. तो एक व्यक्ति जिनका नाम था कर्क शेट्टी, जिनसे वासुदेव के पिता मध्यज्ञ भट्ट ने बुल या बैल खरीदने के लिए बहुत सारा ऋण लिया था, और वो ठीक से वापस कर्जा ऋण अदा नहीं कर रहे थे. और वो जो कर्क शेट्टी आकर उनके घर के दरवाजे में बैठ गया कि बस अभी, जैसे लोग जंतर मंतर में जाके बैठते हैं ना, धरना देकर बैठ गया. उन्होंने कहा कुछ खाऊंगा नहीं आज, एकादशी निर्जला, पैसे दे दो मेरे वापस या तो मैं उपवास रखूंगा. और महान पाप लगता है कि कोई अतिथि आ जाए और आपके घर में क्या बैठे वो धरना देकर उपवास करे, तो गृहस्थ के लिए उचित नहीं है. तो बहुत दुखी हो गए मध्यज्ञ भट्ट वेदवती. और इन्होंने देखा अपने पिता के चेहरे पर चिंता है, तो उन्होंने सोचा क्या हो गया इनको. तो पिता ने कहा वासुदेव, फायर, आग, बीमारी और ऋण, ये कभी भी व्यक्ति को उसमें डिले नहीं करना चाहिए. बीमारी आ गई तो तुरंत प्रयास करना चाहिए उसका इलाज करें. ऋण थोड़ा भी हो जाए एक रुपए तो चिंता लग जानी चाहिए हमें. नहीं नहीं, मुझे जिसका ऋण मुझे तुरंत देना चाहिए, एक रुपया क्यों ना हो, वो उचित नहीं है. और दूसरा है फायर, छोटी सी चिंगारी लग जाए तो नहीं सोचना चाहिए कि अभी नींद से सो जाता हूं. ये तीनों चीजें भयानक है, डिस्ट्रॉय करती है व्यक्ति को. तो उन्होंने कहा मैंने कर्जा लिया था इनसे और दे नहीं पा रहा हूं. तो मध्यज्ञ भट्ट की चिंता देखकर वासुदेव इस स्थान में आते हैं और अपनी माता को कहते कि माँ, आप प्रसाद की व्यवस्था करो, मैं पेमेंट की व्यवस्था करता हूँ. तो वासुदेव यहाँ आ गए, इमली के वृक्ष के पास आ गए. देखा ये इमली क्यों इतनी सारी इमलियां हैं? कोई सांबर बनाने के लिए नहीं, ये इमली की चटनी के लिए नहीं. हाँ, यहाँ ये आ गए इमली के वृक्ष के पास और इसके पत्ते, कुछ ग्रंथ में कहा कि पत्ते तोड़ लिया या बीज ले लिया है, ऐसे अपने मुट्ठी में कर्क शेट्टी को का हाथ आपका खोलो, गए और उसके हाथ पर ऐसे थमाया जो इमली के बीज या पत्ते जो भी हो. ऐसे जैसे मध्वाचार्य ने उसके हाथ पे ऐसे खोला तो गोल्ड कॉइन्स प्रकट हो गए इमली के सारे बीजों से, और वो घर ही तो एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने. मध्यज्ञ भट्ट बहुत खुश हो जाते हैं अपने बालक के इस कार्य को देखकर, और वो व्यक्ति चला जाता है. सारा धन उसका एक प्रकार से ऋण आधा होता है. और फिर जब दूसरी बार आया वो व्यक्ति तो मध्वाचार्य से उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया. हरे कृष्णा, जोर से
हरे राम, हरे राम.
तो ऐसे जब 3 साल के हो गए थे वासुदेव, तो उनकी जो माता थी वो अपने मायके उनको ले गई नेदियुर. क्या मायके का गांव का नाम क्या था? नेदियुर ले गई. तो जब वो ले गई तो वहां देखा कि इनका मन तो लगता नहीं था, जो अभक्त बच्चे हैं या अभक्त लोग हैं उनसे बात करने में. तो वहां सारे लोग सांसारिक बातें कर रहे थे, जहां शादी का वातावरण था सब लोग भौतिक बातें कर रहे थे. तो इन्होंने सोचा कि यहाँ से निकलना बेस्ट है. तो फिर ये छोटे से ही थे 3 साल के, वो सारे भीड़ में से गायब हो गए. गायब होकर घूमते घूमते वो चले गए उड़ुपी चले गए. कहाँ चले गए? उड़ुपी जाते हैं, वह अनंतेश्वर आदि का दर्शन करते हैं और उनके पिता वगैरह उनको यहाँ सब जगहों में ढूंढ रहे हैं. और फिर गए उड़ुपी ढूंढने गए तो अनंतेश्वर के सामने वासुदेव वहां खड़े हैं. उन्होंने कहा बेटा यहाँ आपको कौन लेके आया? कहते भगवान मुझे ले आए यहाँ. हाँ, तो इस प्रकार से वासुदेव का जो मन है बचपन से ही भौतिक कार्य में नहीं लगा था. मध्यज्ञ भट्ट ने सोचा कि मेरे बालक की रक्षा अनंतेश्वर ने की है. तो ऐसे पजका क्षेत्र में जो वो योग माया का टेम्पल है, ऊपर जो ऑन द वे आप जाते समय भी देखिए दुर्गा देवी का टेम्पल है, जिसको विमान गिरी कहते. क्या कहते? विमान गिरी. तो कई घंटों तक वहां खेला करते थे. तो ऐसे मध्वाचार्य एक बार जब अपने माता के साथ एक फेस्टिवल में गए जहां ड्रामास कथाज वगैरह हो रही थी, तो एक बहुत बड़ा वक्ता वहां वक्ता नहीं इनके फादर ही कथा कर रहे थे और भागवत पर कथा दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। और फिर अचानक ही मध्वाचार्य खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आप ठीक से कथा नहीं कर रहे हो, छोटे से बालक है। और उनको कहा कि आप थोड़ा उचित रूप से भागवतम की व्याख्या करो, क्योंकि मध्य के भट्ट ने क्या किया था, बहुत बड़े लोगों के बीच में भागवतम पर प्रवचन दे रहे थे और उसमें भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें अलग अलग वृक्षों के बारे में बोला गया है। तो मध्यगय भट्ट कह रहे थे उन वृक्षों का नाम, जिसमें उन्होंने कहा तुलसी, वट वृक्ष, आंवला, नीम, मैंगो ट्रीज, कदम्ब, और एक वर्ड था लिंकुचा ट्री। कौन सा ट्री? लिंकुचा। उसको वे एक्सप्लेन नहीं किए और स्किप करके चले गए। तो मध्वाचार्य खड़े हो गए और उन्होंने कहा, पिताश्री क्वेश्चन है, अपने बाप को पूछ रहे इतने लोगों के बीच में, बताइए मुझे लिंकुचा का मतलब क्या है। अभी उनके पिता को पता नहीं था, हाँ वो बिल्कुल चुप हो गए, उनको बोलना नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, आप लोगों को धोखा दे रहे हो कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता नहीं है, कहते मैं बताता हूं आपको, उसका मतलब है नीम का ट्री। किसका ट्री? तो इस प्रकार से उन्होंने कहा मध्वाचार्य ने, नहीं नीम का नहीं, नींबू होता है ना नींबू, एक तो नीम होता है अलग और दूसरा होता है नींबू का ट्री, हाँ नींबू का लाइम ट्री। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य बचपन से ही इस प्रकार के एक प्रकार से अपसिद्धान को रोकते थे, स्टॉप करते थे। तो ऐसे मध्वाचार्य, क्योंकि पहले जीवन में वो भीम थे, तो भीम महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में उन्होंने एक मणिमान राक्षस का वध किया था या एक प्रकार से उसे मारा था, तो वही राक्षस फिर से यहाँ एक सांप के रूप में प्रकट हो गया था इस पहाड़ी के ऊपर विमानगिरी पर, उनको मारने के लिए आया था। जब मध्वाचार्य अकेले वहां खेल रहे थे और सारे लोगों को पता था कि एक भयानक सर्प वहां निवास करता है, तो मध्वाचार्य ने केवल जब वो सांप उनको काटने के लिए आया तो एक अपने अंगूठा उसके ऊपर रख दिया पांव का, और अंगूठे से ही उसको क्या कर दिया, मार डाला। तो ऐसे मध्वाचार्य बहुत शक्तिशाली आचार्य थे, और जैसे मैंने कहा उनकी माता जब उनको बुलाती थी तो कैसे आते थे वहां से, जंप मार के और घर के अंदर प्रवेश करते थे। और स्कूल में हमेशा टॉपर थे और हर कोई स्कूल का जो स्टूडेंट था उनका एसोसिएशन चाहता था, और हमेशा स्कूल में लड़ाई करते थे क्योंकि बहुत बल था, उसका कहाँ ना कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, तो सारे बच्चों की एक साथ पिटाई करते थे। और फिर ये कभी स्कूल में रहते नहीं थे क्योंकि टीचर आगे क्या पढ़ाने वाला है वो उनको पहले से पता होता था। तो एक बार एक टीचर ने कहा, बहुत गुस्सा आ गया टीचर को, कि तुम ठीक से स्कूल अटेंड नहीं करते हो और केवल बहाना बनाते हो कि भूख लग रही है, प्रसाद के लिए घर चले जाते हो छुट्टी लेकर, और सीखते नहीं हो तो तुम विद्वान नहीं बनोगे, ऐसे टीचर ने उनको डांटा। तो ये मध्वाचार्य वासुदेव कहते हैं, जो पहले से मैं सीखा हूं उसको रिपीटेशन रिपीट करके फिर से सीखना मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, गुरु जी आप आगे क्या पढ़ाने वाले हैं ना वो भी मैं अभी बोल सकता हूं। तो गुरु जी ने कहा, बोलो। तो आगे जो जो सिखाने वाले थे श्लोकाज या जो भी चैप्टर्स, वो मध्वाचार्य बोलते गए, उनके गुरु बिल्कुल हैरान हो गए कि ये बालक कितना शक्तिशाली है और कितना विद्वान है। तो उन्होंने इनका नया नाम रखा, टीचर ने क्या नाम रखा, अनुमान तीर्थ। क्या नाम रखा? अनुमान तीर्थ। तो ये जो कुंड है इसका नाम वासुदेव तीर्थ है। क्या नाम है? क्योंकि मध्वाचार्य चार तीर्थों में रोज स्नान करने के लिए जाया करते थे यहाँ, मुझे इनमें भूल गया, परशु तीर्थ वगैरह, ऐसे चार तीर्थ थे जिनमें जाके स्नान करते थे। तो उनके माता को रोज चिंता होती थी कि मेरा बालक रोज जाकर अलग अलग दूर तीर्थों में स्नान करता है, तो अपनी माता की चिंता को दूर करने के लिए सारे तीर्थों को यहाँ ही उन्होंने इकट्ठा कर लिया और ये नया तीर्थ बन गया जिसका नाम वासुदेव तीर्थ हो गया। तो इस प्रकार से एक बार मध्वाचार्य जब बालक थे तो अपने टीचर का एक बेटा था, उनके साथ खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे तो उसको बहुत सर दर्द होने लगा। तो मध्वाचार्य ने उसके पास गए और उसके कान में जोर से फूंक मारी। फूंक मारते ही एक तो उसका सर दर्द ठीक हो गया और दूसरा उस बालक के जितने पूर्व जन्म थे वो उसको याद आ गए मध्वाचार्य की एक फूंक से। तो कौन चाहता है फूंक लेना यहाँ? हम जीवित नहीं रहेंगे, फिर पिछले जन्म याद आएंगे। तो ऐसे मध्वाचार्य बहुत पावरफुल आचार्य थे और उनका एक उपनिषद उनका प्राण था, तैतरीय उपनिषद। कौन सा उपनिषद? तैतरीय उपनिषद। ये उनका पसंद वाला बुक था या उपनिषद था जिसमें भगवान विष्णु की महानता को स्थापित कर दिया था। तो ऐसे मध्वाचार्य जब बड़े होते गए, 10-12 साल के हो गए, 10 या 11 साल, तो उन्होंने सोचा कि मेरा अपने जीवन का जो मिशन है भक्ति के शुद्ध सिद्धांत की स्थापना करना, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, तो ये मैं करने रहा हूं और ये करने के लिए संन्यास ग्रहण करना चाहिए। क्या लेना चाहिए? अभी 11 साल की आयु है लेकिन कितनी बड़ी बात सोच रहे हैं। हम वृद्ध हो जाते हैं तभी संन्यास का नाम लेते ही रोमांच, कैसे छोड़ूंगा घर, पत्नी, बच्चे, घर, और आयु कितनी हो गई है? 80 साल। वो जबरदस्ती व्यक्ति घर में नहीं रह सकता लेकिन फिर भी संन्यास नहीं ले सकता हो। यहाँ 11 साल का बालक सोचता है कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। और फिर देखा उन्होंने कि उनके पिता उनकी शादी करवाना चाह रहे थे, एक युवती, वैष्णवी युवती को ढूंढ रहे थे कि हाँ चलो इनका शादी करते हैं। जैसे इनको ये न्यूज मिली उन्होंने कहा मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी इच्छा तो केवल कृष्ण की भक्ति करनी है और प्रचार करना है सारे लोगों को। तो ऐसे मध्वाचार्य ने फिर एक भक्त को ढूंढना शुरू किया, एक वैष्णव की सर्च करने लगे। मध्वाचार्य ने सुना था एक यहाँ नजदीकी एक गांव था शायद बंद करे नाम का, तो वहां उन्होंने सुना था कि एक महान साधु निवास करते हैं ब्रह्म संप्रदाय के, जिनका नाम था अच्युत प्रेक्ष। क्या नाम था? अच्युत प्रेक्ष का मतलब है कि जो अच्युत का ज्ञान रखते हैं उनको अच्युत प्रेक्ष कहते हैं। और वैसे उनके बारे में बोला गया है कि ये पांडवों के महल में अपने पूर्व जन्म में मधुमक्खी थी जो द्रौपदी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद को खाया करती थी। तो ऐसे ये वैष्णव एकांत में निवास कर रहे थे, अकेले थे, क्योंकि शंकराचार्य का जो मायावत सिद्धांत है उसका प्रचार बहुत अधिक था। तो वैष्णविज्म एक प्रकार से छुपा हुआ था, कोई वैष्णव सन्यासी ओपनली बाहर आकर प्रीच नहीं कर पाता था क्योंकि उस समय बौद्ध और शंकराचार्य के जो दो सिद्धांत थे उनका बहुत स्ट्रांग प्रचार था। तो जो अच्युत प्रेक्ष थे उनके गुरु ने उनको ये उपदेश दिया था कि या आदेश दिया था कि आप क्या करो कि जो शंकराचार्य का सिद्धांत है उसको परास्त करो और वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करो। और ये सिद्धांत कि जो जीव है वो भगवान के सदैव आधीन है, वो भगवान के समान नहीं है। तो अच्युत प्रेक्ष अपने गुरु के आदेशों के बारे में हमेशा सोचा करते थे कि कैसे इस आदेशों का पालन किया जाए। तो एक दिन अच्युत प्रेक्ष अनंतेश्वर की पूजा करते हैं और जैसे पूजा करने लगते हैं तो एक व्यक्ति वहां आकर जोर से बोलता है कि अच्युत प्रेक्ष एक भक्त आपके जीवन में आएगा जो क्या करेगा, आपकी ये जो चिंता है कि आपके गुरु के आदेशों का कैसे पालन करो इसको पूरा कर सकता है। तो फिर मध्य के बट्टे ने देखा मेरा बेटा जाता कहाँ है। तो हमेशा ये जो मध्वाचार्य हैं वासुदेव हमेशा अच्युत प्रेक्ष का संग करने के लिए जाते थे, घर में नहीं रहते थे। तो उन्होंने सोचा ये सन्यासी का संग कर रहा है इसका मतलब ये क्या बनना चाहता है? सन्यासी बनना चाहता है। जैसे मैंने कल भी कहा था तो ये सोचकर मध्यज्ञ भट्ट को बहुत चिंता हो गई और संन्यास लेना चाहते हैं। वासुदेव ने अपने माता पिता को कहा कि मुझे क्या दे दो, परमिशन दो। तो उनके पिता कहते कि देखो आपकी माँ के मुख को देखो। किसके मुख को देखो? हाँ, जैसे मैंने कल किसका उदाहरण दिया था, चैतन्य महाप्रभु का। तो वासुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ा, पिता का मुंह देखो या और माँ का देखो, उनको उनका हृदय फिक्स था। तो इस प्रकार से फिर एक दिन उन्होंने सेफ्रॉन कपड़े ले आए 11 साल की आयु में और उनको काटने लगे कि अभी मुझे सेफ्रॉन वस्त्र पहनने हैं, संन्यास ग्रहण करना है। और फिर कालांतर में वो बाद में संन्यास ग्रहण करते हैं और उनका नाम पड़ता है पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। क्या नाम पड़ता है? तो पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के नाम से वो जाने जाते हैं और उनका संन्यास हो गया था। और संन्यास का उनका प्रमुख उद्देश्य था कि प्रचार करना। तो भगवान स्वयं अच्युत प्रेक्षक को कहते हैं कि मैंने आपके पास पूर्ण प्रज्ञ को भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि आपके हृदय में शुद्ध भक्ति है। जिस प्रकार से प्रभुपाद कहते थे कि आप जो यंग गर्ल्स और बॉयज हो, ये किसने मेरे पास भेजे हैं? मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, इस प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे। तो अच्युत प्रेक्षक के पास भी किसको भेजा भगवान ने? मध्वाचार्य। क्या नाम था उनका? पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। तो ऐसे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ जब उनका संन्यास हो गया, कुछ साल बीते, उन्होंने कहा कि मुझे गंगा स्नान करने के लिए जाना है। कल भी मैंने पास टाइम सुनाया था। तो फिर क्या हुआ उसका? गुरु ने उनका विरह उनको सहन नहीं हो रहा था, तो उनके गुरु ने कहा कि 3 दिनों के पश्चात ही गंगा देवी यहाँ ही प्रकट होगी। वो जो सरोवर है उसका नाम अनंत तीर्थ था पहले, लेकिन जब गंगा प्रकट हो गई तो उस स्थान का नाम पड़ा मध्व सरोवर। क्या नाम पड़ा? मध्व सरोवर। तो फिर गंगा हर 12 साल में वहां प्रकट होती है और हजारों लोग आते हैं वहां मकर संक्रांति में भी स्नान आदि करने के लिए। तो ऐसे मध्वाचार्य की कई सारी दिव्य लीलाएं हैं। और फिर अच्युत प्रेक्षक ने एक बार अनाउंस किया उनके बारे में कि आगे का आचार्य कौन होगा। तो जनरली नोइंग था कि ये मध्वाचार्य जो इतने पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के रूप में इतने विद्वान थे कि उन्होंने एक सन्यासी आए थे यहाँ उनके साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए, तो मध्वाचार्य ने उनको हरा दिया था, जिसके कारण वो इतने अधिक फेमस हो गए। और मध्वाचार्य का विशेष आकर्षण श्रीमद् भागवतम के लिए था। तो मध्वाचार्य रेगुलर भागवतम का अध्ययन करते थे और भागवतम पर शिक्षा देते थे। इतना उनका अनुराग था भागवतम पर, तो इनको फिर नया टाइटल मिला भागवत पाद। क्या नाम मिला? हाँ, तो ये मध्वाचार्य का टाइटल है। जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को भी ये टाइटल दिया गया था डिवोटीज ने, भागवत पाद। तो ये मध्वाचार्य को ये टाइटल था। फिर अच्युत प्रेक्षक ने देखा कि अभी मेरे बाद जो नेक्स्ट आचार्य होंगे वो मध्वाचार्य होंगे, तो इसलिए उनका नाम उन्होंने लिखा रखा आनंद तीर्थ। क्या नाम रखा नया? आनंद तीर्थ। तो ऐसे मध्वाचार्य ने फिर ओपनली बड़े बड़े प्रवचन देना शुरू कर दिए। एक बार एक दो बहुत बड़े विद्वान आए बुद्धिस्ट, जिनका नाम था वादी सिंह और बुद्धि सागर। तो मध्वाचार्य के साथ वो लोग बहुत लंबा चर्चा करने लगे और उन लोगों ने कहा कि नहीं, आज हम चर्चा नहीं करेंगे, शाम हो गई है, कल फिर से चर्चा करेंगे। तो वो दोनों ने सोचा कि ये मध्वाचार्य कितना पावरफुल है, कितनी विद्वत्ता रखता है, ये तो हमें हरा देगा सबके सामने। तो इन्होंने सोचा कल नहीं जाना है हमें उस डिबेट में। तो रात को ही इन लोगों ने क्या किया, अपना बैग वगैरह पैक करके उडुपी से भाग के चले गए। मध्वाचार्य ढूंढने गए सुबह उनके रूम में, कहाँ है ये दोनों? देखा कि कुछ भी उनका बैग नहीं है, वो लोग नहीं है, वो वहां से गायब है। तो ऐसे मध्वाचार्य, जिनका नाम अभी आनंद तीर्थ था, बड़े बड़े क्राउड को प्रवचन देते थे। विशेष रूप से वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने जो भाष्य लिखा था, उसके ऊपर चर्चा करते थे और शारीरिक भाष्य वेदांत सूत्र पर जो कमेंट्री लिखी है शंकराचार्य ने उसको कहते हैं शारीरिक भाष्य, उसको उसका खंडन किया उन्होंने और जितने भी लोग सुना करते थे उनको बहुत मधुर लगता था जब मध्वाचार्य बोलते थे। तो सबने कहा आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, इसको क्या करो एक ग्रंथ के रूप में प्रदान करो। तो मध्वाचार्य ने फिर हाँ वो टीका अपनी प्रदान की इसके ऊपर वेदांत सूत्र के ऊपर और तब से फिर उनको ये नाम मिला था मध्वाचार्य। तब से उनको क्योंकि वेदांत सूत्र पर उन्होंने टीका प्रस्तुत की थी तब से सारा जगत उनको एक महान आचार्य के रूप में स्वीकार कर रहा था, मध्वाचार्य के रूप में उनको स्वीकार कर रहा था। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य ने जो अनेकों ग्रंथ लिखे हैं अनेकों टीकाएं लिखी हैं तो उनके गुरु उनको कहा करते थे कि आप इन लोगों के भाष्य को खंडन करने में टाइम मत गवाओ, आप क्या करो हाँ इन ग्रंथों को लिखो ताकि ये जो तारों के समान ये टिमटिमाते छोटे छोटे लोग हैं ये विलुप्त हो जाएंगे, आप वास्तव में सूर्य या चंद्रमा के समान हो। तो ऐसे मध्वाचार्य एक बार प्रचार यात्रा में निकले। कौन सी यात्रा में? प्रचार यात्रा में निकले तो एक छोटा सा गांव है यहाँ नजदीक विष्णु मंगलम, कितने अच्छे नाम है यहाँ के विष्णु मंगलम। तो विष्णु मंगलम में गए तो एक लोकल गृहस्थ भक्त ने उनको घर में प्रसाद के लिए बुलाया और उन्होंने 200 केला लेके आए थे, कितने 200 बनाना जो एक फुट लंबे थे और उनका जो राउंड था वो 10 इंच का था, कितने इनका इंच का ऐसा देखा है बनाना आपने नहीं, तो ऐसे बनाना लेके आए और हमें एक दिया जाए तो फिर हम लंच स्किप कर सकते हैं। तो फिर ऐसे उनको दिया। हाँ तब मध्वाचार्य ने कहा वहां कहा कि मेरे अभी इतने हट्टे कट्टे थे तो उनका अंगूठा भी तो बड़ा होगा क्योंकि मेरे जो पेट के अंदर मेरे अंगूठे के समान जो फायर है वो हमेशा जलती रहती है, इस कारण से मुझे हमेशा भूख लगती है और मैं किसी भी चीज को ग्रहण कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे ये जो आग है पेट में ये वैसी है जिस जैसे इस जगत का संहार करने के लिए जो आग प्रकट होती है वैसे ही मेरे पेट की आग है। तो ऐसे मध्वाचार्य फिर यहाँ से ट्रैवल करते करते केरला जाते हैं अनंत पद्मनाभ का दर्शन करने के लिए जो 18,000 शिलाओं से बना हुआ विग्रह है। अनंत पद्मनाभ कितने शिलाओं से बना हुआ है? 18,000 शिलाओं से बना है। तो जब अद्वैताचार्य ने मध्वाचार्य जब वहां गए तो वहां जाकर उन्होंने लेक्चर दिया केरला में और उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने 5 शिक्षाएं दी। आप सब मेरे साथ हो या सीधा बैठिए सब लोग और बोलिए हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम।
पानी भी पी लीजिए नहीं तो मैं अकेला बोलता रहूंगा, थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा?
सहना पड़ेगा।
तो पहला सिद्धांत उन्होंने दिया शिक्षा उनकी क्लास में कि जीव और भगवान में अंतर है। क्या है पहली शिक्षा? जीव और भगवान में अंतर है। और दूसरा भगवान और ये जो पदार्थ है मैटर उसमें भी अंतर है क्योंकि ये जो मैटर या पदार्थ है वो भगवान की शक्ति है और जो भगवान है वो अनचेंजेबल है, मतलब भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता, पदार्थ परिवर्तन होता रहता है। और तीसरी शिक्षा उन्होंने दी कि जो अन्य इतने सारे जीव है वो इंडिविजुअल है स्वतंत्र है और उनमें भी आपस में क्या है भेद है अंतर है। और चौथी शिक्षा उन्होंने दी कि जीव और जो प्रकृति है नेचर है हाँ उसमें भी अंतर है। और पांचवी शिक्षा थी उनकी कि जो वेरियस मटेरियल एलिमेंट्स हैं अलग अलग जो भौतिक पदार्थ हैं हाँ उनमें भी अंतर है, जैसे फॉरेस्ट है कितना बड़ा, लेकिन उसमें हर एक का अपना अपना स्थान है और हर एक अलग अलग है। वृक्ष है, वेली है, पशु भी वहां रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, सब लोग अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य वहां शिक्षा प्रदान करते हैं और मध्वाचार्य वहां से रामेश्वरम जाते हैं, फिर वो श्रीरंगम जा रहे थे। श्रीरंगम जाते जाते उनको बहुत प्यास लगी, प्यास लगी। एक गांव में वो पहुंचे तो वहां पानी नहीं था, तो उन्होंने अपना जो संन्यास दंड था उसको जोर से मारा, मारते वहां से क्या निकल आया, पानी की धारा। हाँ, तो ऐसे मध्वाचार्य थे। मध्वाचार्य इतने पावरफुल आचार्य हैं कि फिर अपनी ये प्रीचिंग टूर खत्म करके वापस आते हैं, चंद्रमौलेश्वर और अनंतेश्वर का दर्शन करते हैं। तब तक उडुपी कृष्ण का अपीयरेंस नहीं हुआ था, अभी तक वो चंद्रमौलेश्वर और अनंतेश्वर ये दो विग्रहों का दर्शन आदि करते थे। तो जब संन्यास लेकर उनको 7 साल हो गए तो मध्वाचार्य ने सोचा कि मुझे अभी बद्रीनाथ का दर्शन करना चाहिए। किसका दर्शन? बद्रीनाथ का, क्योंकि बद्रीनाथ में बद्री वृक्ष के नीचे व्यासदेव निवास करते हैं। व्यास का अपना स्थान है वहां, जो बहुत सारे ऋषि मुनियों के संग में निवास करते हैं। बद्रीनाथ के ऊपर भी एक स्थान है जिसको कहते हैं शम्याप्रास, भागवतम के प्रथम स्कंद में आप पढ़ते हैं। तो वहां क्योंकि इन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी थी जिसका नाम था हरि गीता भाष्य, और इस टीका को कितनी ऑथराइज है या मैंने सही से लिखा है कि नहीं वो चेक करने के लिए वो व्यासदेव के पास जा रहे थे अपने शिष्यों के सहित। वहां गए तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था सत्य तीर्थ। तो मध्वाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को एक स्थान में रखा, ने पहले तो वो गए बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ में वहां जो विग्रह थे, डेटीज है बद्री नारायण, नर और नारायण, उनको अपनी ये जो टीका है पूरे रात पढ़कर सुनाई। तो भगवान उनकी इस टीका को सुनकर आनंदित होते हैं, और फिर वहां से क्योंकि बद्रीनाथ में 5 बद्री हैं, कितने बद्री हैं? एक तो है बद्री विशाल, जहां अभी जो स्थान है बद्री विशाल कहते हैं उसको, मध्वाचार्य वहां 48 डेज के लिए रुके थे। दूसरा स्थान है योग बद्री, जब विंटर बहुत हाई हो जाता है तो डेटीज को नीचे लेके आते हैं उत्सव विग्रह को और वहां रखते हैं, जिस स्थान को योग बद्री कहते हैं। और तीसरा है विरुद्ध बद्री, जहां भगवान नारायण के निवास करते हैं विग्रह। और चौथा है ध्यान बद्री, और पांचवा है भविष्य बद्री, कि कलयुगा में ये जो अभी जो बद्रीनाथ है ये सब डिसअपीयर हो जाएगा, माउंटेन गिर गिर के खत्म हो जाएगा, फिर एक स्थान जो भविष्य बद्री है वहीं रहेगा और वहां लोग जाया करेंगे बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए। तो ऐसे मध्वाचार्य उत्तर बद्री गए और वहां से उन्होंने सोचा कि मुझे शम्याप्रास जाना है व्यासदेव को मिलने के लिए, क्योंकि व्यासदेव उनके शिक्षा गुरु है, प्रमुख आचार्य है इस संप्रदाय के, ताकि व्यासदेव को मैं गीता का कॉमेंट्री दिखाऊंगा और सीखूंगा व्यासदेव से और शिक्षा प्राप्त करूंगा। तो ये सोचकर वो निकल पड़े अपने शिष्यों के साथ और शिष्यों को कहा कि ये प्रवास बहुत खड़तर है, आप लोगों को नहीं आना चाहिए मेरे साथ। तो सत्य तीर्थ ने कहा नहीं गुरुदेव, मैं आपके साथ आऊंगा। उन्होंने कहा अरे मत आओ। तो जब मध्वाचार्य की बात नहीं सुनी वो उनके साथ चले गए, गुरु जी के साथ गए। तो ऐसा कठिन स्थान था जहां से वो उतर ऊपर पहाड़ों में चढ़ रहे थे मध्वाचार्य, कि एक स्थान से उनका जो शिष्य है उसके लिए असंभव हो रहा था। फिर मध्वाचार्य ने एक फूक मारी, फूक मारते अपने शिष्य को वहां भेज दिया जहां बाकी शिष्य एक जगह बैठे थे शांति से, जिसको जोशीमठ कहते ना, गए ना बद्रीनाथ, जोशीमठ में भी एक दिव्य देशम है, तो वहां भेज दिया उनको। और फिर मध्वाचार्य गए ऐसे शम्याप्रास में हिमालय को क्रॉस करके। वर्णन आता है कि वो व्यासदेव की स्थली है जो सुंदर सुंदर कमलों से भरी है, नाना सरोवर है, अनेकों कुटिया है, जहां कई सारे ऋषि मुनि वहां निवास करते हैं, व्यास देव के संग में और मध्वाचार्य के वो शिक्षा गुरु हैं जिनसे वो सीखते हैं। जैसे मध्वाचार्य गए, मध्वाचार्य ने प्रणाम किया उनको, व्यास देव ने उनका आलिंगन किया, गले मिले और व्यास देव को आशीर्वाद के रूप में मध्वाचार्य कहते हैं कि मैं जहां भी जाऊं मैं केवल आपके विचारों में लीन रहूं, आपके बारे में सोचता रहूं, और दूसरा इस भौतिक जगत के जीवों का मैं क्या करूं, सदैव उद्धार करूं। तो इस प्रकार से फिर मध्वाचार्य ने उनसे कई सारी शिक्षाएं ली और फिर उन्होंने वो वापस आते इस स्थान में, और फिर आते आते हैं मध्वाचार्य नवद्वीप आते हैं। कहाँ आते हैं? नवद्वीप में कुछ दिन रहते हैं और तब चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने बुक नवद्वीप धाम महात्म्य जो एक बुक लिखा है उसमें किया है। तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित होकर उनको कहते कि हे मध्वा, तुम क्या करो, मेरे इस स्वरूप का प्रचार करो और मायावाद सिद्धांत का खंडन करो और प्रीच करो, मैं अवतरित होकर आपके संप्रदाय को स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके जगन्नाथपुरी जाते हैं, कुर्मा क्षेत्र, सिंहाचलम, आंध्रा आदि प्रचार करते करते मध्वाचार्य वापस इस स्थान में पहुंचते हैं, उड़पी आ जाते हैं। तो ऐसे मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों को 5 शिक्षा दी थी जिसको वो कहा करते थे पंचरात्रि की, कि इनका पालन करना चाहिए। मध्वाचार्य मध्वाचार्य हमेशा कहते थे कि मैं करता नहीं हूं, कृष्ण करता है। तो उन्होंने जो 5 शिक्षा दी उसमें से था कि सबसे पहले एक शिष्य को हमेशा तपस्या करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए किसी भी प्रकार की। और इसी कारण से उनके शरीर पर मुद्राएं अंकित की जाती थी। और दूसरा, मध्वाचार्य कहते थे हर एक को नियमित तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि मध्वाचार्य कहते हैं कि ये शरीर कृष्ण का टेंपल है। और तीसरी चीज उन्होंने दी जो कि दीक्षा के समय नया नाम हो जाना चाहिए, न्यू नेम। और चौथी चीज कि एक शिष्य को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, चांट करनी चाहिए 3 बार। और 5वीं चीज, कलयुग का जो युग धर्म है उसका उच्चारण करना चाहिए,
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो मध्वाचार्य के कई शिष्य हुए, एक थे नरहरि तीर्थ आदि। तब मध्वाचार्य एक दिन मालपे बीच में गए और तब उनको क्या मिले, क्या मिले, उडुपी कृष्ण। तो इतने प्रचार आदि करने के बाद, इतनी सेवा करने के बाद भगवान क्या हो जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा भगवान का देखने का प्रयास मत करो, ऐसा सेवा करके दिखाओ, ऐसा कुछ करो कृष्ण के लिए, कृष्ण आपको देखने के लिए आ जाए। तो हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि कैसे मैं भगवान को देखूं, ये भौतिक आंखों से क्या देखेंगे हम, चमड़ी की आंखें जिसमें हमें चश्मा लगाना पड़ता है बार बार, तो क्या भगवान को देखेंगे। तो कुछ ऐसा करें कि जिसके द्वारा भगवान हमें देखे। तो ऐसे मध्वाचार्य का प्रेम इतना अधिक था कि द्वारका से भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं उनसे सेवा स्वीकार करने के लिए। तो ऐसे मध्वाचार्य कौन से रस में भगवान की सेवा करते थे, आप देख से नहीं सुनते हैं, वात्सल्य रस। कौन से रस? वात्सल्य रस में उनकी सेवा की जाती है। आप देखो एक छोटे से बालक, यदि माँ अपने उनसे प्रेम करती है बालक से, तो उसको प्रेम पता चलता है, वो कैसे नहलाती है अपने बालक को, पता चलता है कि नहीं? पता नहीं, आप लोगों ने देखा नहीं, हम तो गांव में देखते थे। माता पूरा बच्चे को कितना समय, पूरा आधा है, पौन घंटे उसको नहलाती रहती है, तेल लगाएगी, उपटन, क्या क्या चीजें लगाएगी प्रॉपरली। वैसे आज देखा भगवान की कैसा स्नान, कितने सारे उपचार हो रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान की ये जो वात्सल्य भावना में सेवा ये कर रहे थे। तो मध्वाचार्य फिर सेकंड विजिट करने के लिए निकल पड़े बद्रीनाथ की। कितने विजिट? हम दक्षिण भारत पहली बार आ रहे हैं तो दूसरी बार सोचेंगे कि क्यों आना है, है? और उस समय पैदल जाना होता था उनको, बद्रीनाथ पैदल। आपको मैं कहूं कि मैं बस लेके जा रहा हूं, आप उडुपी कृष्ण पैदल आइए, कितने लोग आएंगे यहां से? कोई नहीं आएगा। हाँ, तो मुश्किल है। तो मध्वाचार्य ने दूसरा विजिट अपना रखा बद्रीनाथ जाने के लिए। जाते जाते वो महाराष्ट्र से गुजर रहे थे, तो वहां एक राजा थे जिनका नाम था यदुवंश। और वो राजा की खासियत क्या थी कि वो दूसरों को सेवा में एंगेज करने में बड़ा चतुर था। तो राजा एक बड़ा तालाब का निर्माण कर रहा था, तो जो भी रास्ते में जाने वाले आने वाले लोग हैं उनको बलपूर्वक उसमें नियुक्त करता था। तो मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो मध्वाचार्य को भी पकड़ा उन्होंने, कहा कुदाल और ये फावड़ा, फावड़ा कहते कुदाल और ये सब कुछ ले लो, खनन करना शुरू करो, हाँ तालाब निर्माण में लग जाओ। तो मध्वाचार्य ने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की। उन्होंने कहा राजा धीराज, क्या कहा?
राजा धीराज।
ऐसे कहा कि मुझे तो, मैं तैयार हूं लेकिन आप जरा करके दिखाइए कैसे करते हैं। राजा उनके वश में हो गया और राजा ने उठाया वो कुदाल है जो भी, और खनन करने लगे। राजा भूल भी गया कि इनको लगाना है, ये एंगेज हो गया राजा और ये पूरा पार्टी वहां से निकल पड़ा। राजा वहां खुदाई करते रहा शाम तक। तो ऐसे मध्वाचार्य थे। मध्वाचार्य दिल्ली भी आए थे, दिल्ली के राजा से भी मिले थे। हाँ, बहुत सारे उनके पास टाइम है मध्वाचार्य के। तो ऐसे मध्वाचार्य जब अपने शिष्यों को लेकर जंगल से जा रहे थे, तो उनके शिष्य थे एक सत्य तीर्थ। ये पूरा पार्टी जंगल से जा रहा था, तो अचानक इनका जो शिष्य था सत्य तीर्थ, उनकी जीवा हमेशा कृष्ण नाम लेती थी। हरे कृष्णा, जोर से बोलिए। तो उनकी जीवा हमेशा कृष्ण नाम बोलती थी, और बेचारा छोटा सा भक्त था। मध्वाचार्य बड़े हट्टे कट्टे थे, तो एक शेर ने देखा सत्य तीर्थ को। शेर उनको खाने के लिए ऐसे जब मारता है, मध्वाचार्य से रहा नहीं जाता। मध्वाचार्य ऐसी एक थप्पड़ मारते शेर को, उसी स्थान में खत्म, ढेर हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य बहुत पावरफुल आचार्य हैं। कैसे आचार्य हैं? पावरफुल आचार्य हैं। तो हमें भी भगवत भक्ति में पावर चाहिए। जैसे पेट्रोल होता है ना, अलग अलग उसका आता है पावर, क्या कहते हैं इनको पता होगा?
डीजल पेट्रोल दोनों प्रीमियम में पावर
है। हाँ, प्रीमियम और पावर। तो हमें भी भक्ति में शक्ति की आवश्यकता है, शारीरिक नहीं। कौन सी शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति हमें मिलती है भक्तों के द्वारा। ऐसे जो महान आचार्य हैं उनके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि बलराम से हमें आध्यात्मिक बल मिलता है, और ये सारे आचार्य डिवोटीज गुरु वृंद ये बलराम के शुद्ध प्रतिनिधि हैं। तो मध्वाचार्य से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमें आध्यात्मिक जीवन में शक्ति प्राप्त हो भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा स्थान है जहाँ हम, कौन से हमारे भाग्य का उदय हुआ है जिसके कारण हम कहाँ बैठे आज, या वासुदेव तीर्थ के किनारे बैठना, प्रजा का क्षेत्र में आकर मध्वाचार्य का गुणगान गाना और उनके विग्रह अनंत पद्मनाभ का दर्शन करना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उस ट्री या उस स्थान में जहाँ उन्होंने वो ट्रीज के जो बीज थे उनको गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट किया था। तो मध्वाचार्य की कृपा से कुछ भी संभव है। एक बैल भी भाष्य की रचना कर सकता है, किसकी कृपा से? मध्वाचार्य जब ग्रंथ लिखते थे, इतने बुक्स हो गए, वो जहाँ जाते थे बैलगाड़ी में बुक्स भर के रहते थे, एक बैल उसको कैरी करता था। तो इनके शिष्यगण कहते थे गुरुदेव आपके ग्रंथों पर हम कॉमेंट्री लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं ये बैल भी लिख देगा। कौन लिख देगा? और वास्तव में ये सब लोग ईर्ष्या करते थे, उनके शिष्यगण उस बैल से ईर्ष्या करते थे। और बैल ध्यान से मध्वाचार्य के जो कथाज हैं, कीर्तन है, उसको सुना करता था और बैल को बहुत आनंद आता था। और मध्वाचार्य बैल से बहुत प्रेम रखते थे, प्रीति रखते थे। आगे चलकर वो बैल क्या करता है, मध्वाचार्य का स्तोत्र आदि की रचना करता है, उसका अलग एक स्टोरी है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि मध्वाचार्य की कृपा से कुछ भी संभव है। तो मध्वाचार्य की कृपा की याचना करनी चाहिए कि हे मध्वाचार्य, आप मुझे फिर से परमिशन दो, कहाँ आने के लिए, उडुपी कृष्णा, उडुपी कृष्ण का मैं दर्शन कर सकूं और आपके गुणों का गान कर सकूं, प्रजा का क्षेत्र में आ सकूं। हाँ, क्यों, चैतन्य महाप्रभु यहाँ विशेष रूप से आए थे उडुपी कृष्ण का दर्शन करने के लिए। श्रीपाद मध्वाचार्य के, उडुपी कृष्ण के, पजप का क्षेत्र के समवेत गौर भक्त वृंद के हृदय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मध्वाचार्य एक बात कहा करते थे कि 8 से लेकर 80 साल तक जो भी आयु है उस हर एक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसको स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं मध्वाचार्य की। कौन सी ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर। तो आप स्टैंड हो जाइए अभी। हरे कृष्णा, थैंक यू।
कौन सा
मध्वाचार्य? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र पर भाष्य की रचना की थी, तब से सबने आचार्य के रूप में उनको स्वीकार किया था। तो अभी हम विजिट करेंगे, यहाँ टेम्पल है जो बड़े बड़े पत्थर हैं। माता को आपने दिखाया उन्होंने कि वास्तव में मैं भेमी हूँ, उनको उन्होंने उठाया था छोटी आयु में। और यहाँ भी कोई सर्प आदि के मार्क हैं, और फिर बाद में उस टेम्पल में जाएंगे, फिर हम वापस जाएंगे। हरे कृष्णा, हमारे पास कम समय है।
सर, साक्षी प्रभु जी की।